तो काफ़ी लंबे समय के बाद महाभारत की कथा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हम लोग अभी तक सुन चुके हैं कि कैसे वन में रहते हुए पांडवों के साथ अलग अलग कष्ट हुए, द्रौपदी का अपहरण हुआ और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछे कि क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ, क्या आपने इतिहास में कभी ऐसा सुना है। और फिर उसके उत्तर में धौम्य ऋषि भगवान श्री राम की कथा को कहते हैं कि कैसे वो कहते हैं कि आप तो अपनी बात कर रहे हैं, स्वयं भगवान जब आए थे तो उनके साथ भी ऐसा हुआ था, उनकी पत्नी का हरण हो गया था। तो उसको कहने के लिए संक्षेप में रामायण की कथा को कहते हैं। युधिष्ठिर महाराज राम कथा सुनते हैं बड़े आनंद से। ऐसे ही वन में रहते हुए कई और घटनाएं हुई, बहुत सारी कथाओं को कहा गया, उन सारी कथाओं को यहाँ इन कक्षाओं में कहना संभव नहीं है, लेकिन कुछ एक कथाओं को कहेंगे और कुछ प्रसंगों का वर्णन करेंगे। जैसे एक प्रसंग हुआ वन में रहते हुए जहाँ भीम अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाए, भीम परास्त हुए, तो ये बहुत सुंदर प्रसंग है, ज्ञान प्रदान करने वाला। वन में रहते हुए कुछ समय तो युधिष्ठिर महाराज इत्यादि कुबेर के वन में रहे, 10 वर्ष बीत गए उनके वनवास के, और वहाँ पर आराम से कुबेर के वन में विचरण कर रहे थे। बहुत से ऋषि मुनि भी वहाँ पर थे, ब्राह्मण इत्यादि साथ में थे। और फिर भीम ने याद दिलाया युधिष्ठिर महाराज को कि हमें वनवास हुआ है और ये 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, 11वां प्रारंभ होने वाला है, अब हमें याद कर लेना चाहिए कि हमें इसके बाद युद्ध करना है। भीम और अर्जुन हमेशा याद दिलाते रहते थे युधिष्ठिर महाराज को कि कहीं भूल नहीं जाएं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज हमेशा क्षमा करना चाहते हैं, तो ऐसा ना हो कि इतना लंबा समय बीत गया 10-12 वर्ष तो उसके बाद युधिष्ठिर महाराज कहें छोड़ो अब हमें ऐसे ही अच्छा लग रहा है वन में रहना, क्या आवश्यकता है जाने की। तो उन्होंने बताया कि ये वन में रहना तो ठीक है, लेकिन ये याद कीजिए कि हम वन में जो कष्ट सह रहे हैं ये उस दुर्योधन की कृपा है और अभी हमें उसको अपनी कृपा देनी है। तो फिर उस वन को छोड़कर पुनः काम्य वन, द्वैत वन इत्यादि में घूमने लगे। तो जिस समय द्वैत वन में रह रहे थे तो भीम, उसको अपनी शक्ति का थोड़ा अहंकार हो गया। भीम घूमते वनों में घूमते, अब शक्ति है उसका करे क्या, तो पेड़ों को उखाड़ दिया करते और उनको ऐसे तोड़ दिया करते अपनी शक्ति दिखाने के लिए, प्राणियों को मारा करते, ऐसे जहां भी विचरण करते वहां उत्पात होता। तो ऐसे ही एक समय वे मार रहे थे और उन्होंने बहुत सारे सर्पों ने देखा और सर्प भागने लगे भीम को देखकर। भीम की शक्ति तो कोई कम नहीं है, बचपन से भीम को इतनी शक्ति है। तो सर्प भागने लगे और भीम उनको भगा रहे हैं, उनको मार रहे हैं, और ऐसे में एक गुफा के निकट वो पहुंचे तो गुफा के द्वार पर एक बहुत बड़ा अजगर बैठा हुआ था, बहुत विशाल अजगर, पूरा गुफा का द्वार उसने अपने शरीर से बंद कर दिया था। और जैसे ही भीम वहां पहुंचे तो ये जब अजगर ने देखा तो बड़ा क्रोधित होकर उनकी तरफ आया और भीम के जो दोनों भुजाएं थी, हाथ थे, उनको बांध दिया। और भीम 10,000 हाथियों का बल भीम में, और भीम ने ऐसे खोलना चाहा, क्योंकि कभी कोई ने बांध देता तो भीम केवल जरा सा झटका देते थे सब टूट जाता था, 10,000 हाथी अगर झटका देंगे तो क्या नहीं टूटेगा। तो भीम ने झटका दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। भीम ने बड़ा प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। भीम को हैरानी हो गई, ये क्या हुआ, पहली बार ऐसा हो रहा था। कितने ही बड़े बड़े राक्षस मिले भीम को, भीम ने युद्ध किया, मार दिया, लेकिन ऐसे असहाय तो भीम को किसी ने नहीं किया था। तो भीम बड़े दुखी हो गए, भीम और प्रयास कर रहे, पूरी शक्ति लगा दी, कुछ भी नहीं हुआ। उसने बड़ी अच्छी तरह से बांध दिया पूरे शरीर को। आप जानते हैं अजगर कैसे खाता है। अजगर पहले अपने शरीर से लिपट कर पूरे जो जिसको खाना है उसको पकड़ लेता है, फिर आराम से खा जाता। तो अब भीम ने बड़ा प्रयास कर लिया लेकिन छूटे ही नहीं। और उस समय भीम उनसे पूछने लगे कि आप कौन हैं, आप कोई साधारण व्यक्ति तो हो नहीं सकते, क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति को जिसने बंदी बना लिया तब साधारण नहीं है। तो उन्होंने बताया कि मैं अपने पूर्व जन्म में नहुष था, आपका ही पूर्वज, और नहुष एक समय इंद्र बने थे। ये कथा आगे वो सुनाएंगे कि कैसे उन्हें श्राप मिला। तो उन्होंने कहा कि मैं नहुष था, मुझे श्राप मिला, अगस्त्य मुनि ने श्राप दिया है और जिसके कारण मैं सर्प बन गया हूं। और उन्होंने मुझे कहा था कि उनको एक वरदान दिया था कि इस समय दिन के कोई एक विशेष समय में अगर कोई आपके चंगुल में फंस जाएगा, कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, देवता ही क्यों ना हो, छुड़ा नहीं पाएगा अपने आप। और इसीलिए भीम छुड़ा नहीं पाए थे। यहां एक महत्वपूर्ण बात हम लोग सीख सकते हैं। एक तरफ थी भीम की शक्ति, 10,000 हाथियों का बल, और दूसरी तरफ एक मुनि के द्वारा दिया गया वरदान। अगस्त्य मुनि ने कह दिया कि कोई भी होगा वो छुड़ा नहीं पाएगा। तो एक साधारण से मुनि के वरदान के सामने 10,000 हाथियों का बल विफल हो गया। तो इसीलिए हमारे लिए ये सीखने की बात है, शारीरिक बल आवश्यक है शरीर को बनाए रखने के लिए, लेकिन शारीरिक बल या अन्य कोई बल भक्ति के बल से बड़ा नहीं है। भक्ति या तपस्या से, भक्ति भगवान के लिए की गई तपस्या से जो बल आता है वो इन सारे बलों से बहुत बड़ा है। और इसका उदाहरण हम लोग इस प्रसंग में देख रहे हैं। इसीलिए व्यक्ति को अगर बल चाहिए तो उसको जीवन में आध्यात्मिक बल की कामना करनी चाहिए। और आध्यात्मिक बल कैसे आता है? आध्यात्मिक बल आता है जब व्यक्ति तपस्या करता है, जब व्यक्ति सेवा करता है। आध्यात्मिक बल के लिए, जैसे शरीर में बल लाने के लिए हमें उसे पोषण देना होता है। व्यक्ति अगर केवल एक्सरसाइज करता रहे, व्यायाम करता रहे और खाए नहीं तो कोई बल नहीं आएगा शरीर में। तो शरीर के पोषण के लिए आहार आवश्यक है। इसी तरह आध्यात्मिक पोषण के लिए कृष्ण कथा का आहार आवश्यक है। जितना कृष्ण कथा हम लोग सुनते हैं उतना हमारे आध्यात्मिक बल को पोषण मिलता है। और जितना ज्यादा हम भगवान की सेवा करते हैं, तो सेवा करना क्या है? जैसे व्यायाम करना। शरीर को जब व्यायाम में लगाया जाता है तो शरीर मजबूत बनता है। तो हमें भगवान की सेवा करनी है, ये व्यायाम की तरह है। और हमें पोषण देने के लिए कृष्ण कथा का श्रवण करना है। तो श्रवण और कीर्तन ये पोषण है, ये शरीर को पोषण देता है। और जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, ये शरीर को पोषण है, आध्यात्मिक शरीर। और जब हम सेवा करते हैं तो ये व्यायाम है। और जब ये दोनों चीज़ें होती हैं, एक तरफ श्रवण और कीर्तन और दूसरी तरफ भगवान की सेवा, तो फिर आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। तो आध्यात्मिक बल के लिए श्रवण कीर्तन आवश्यक है। श्रवण कीर्तन का अर्थ है उसका पालन भी आवश्यक है। श्रवण कीर्तन का अर्थ ये नहीं होता कि हम केवल सुने। नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, तो अर्थ ये है कि अगर धर्म का पालन कर रहे हैं वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा तो फिर वो कोई धर्म नहीं है। तो इसलिए ऐसे कार्य हम करें जिससे हमारे अंदर तपस्या का बल बढ़े। तो आध्यात्मिक बल कृष्ण की प्राप्ति के लिए अति आवश्यक है। अगर हम आध्यात्मिक बल को नहीं पालन कर रहे हैं, आध्यात्मिक बल को लेने का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो ये जो बल शरीर का है ये तो थोड़े समय में चला जाएगा, आध्यात्मिक बल बना रहता है। तो ऐसे भीम को जकड़ लिया। अब भीम को जब पता चला कि अब वो खाने वाले हैं तो भीम विलाप करने लगे। वो कहने लगे कि मैं युधिष्ठिर का भाई हूँ और अगर आपने मुझे खा लिया तो युधिष्ठिर इत्यादि ये नकुल सहदेव जो मेरे ऊपर आश्रित हैं वो तो बेचारे अपने प्राण दे देंगे और युधिष्ठिर वो युद्ध कभी नहीं करेंगे अगर मैं नहीं रहूँगा तो। और फिर मेरी माता, मुझे तो चिंता अपनी माता कुंती महारानी की है कि जब उन्हें पता चलेगा कि मेरी मृत्यु हो गई है तो वो भी अपने प्राण बनाए नहीं रख पाएंगे। अर्जुन हो सकता है अपने बल पर, क्योंकि वो बहुत अच्छा, उसके अंदर बल है, उसको बहुत अच्छा युद्ध करना आता है, तो हो सकता है अपने बल पर वो थोड़ा बहुत युद्ध करे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज कभी युद्ध नहीं करेंगे, वो भी प्राणों को त्याग देंगे। तो ऐसे विलाप करने लगे कि हाय अब सारा अनर्थ होगा, दुर्योधन राजा बनेगा इत्यादि। तो राजा नहुष जो उस समय एक सर्प के रूप में थे, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो तुम्हें खाना ही होगा क्योंकि तुम ऐसे समय में आए हो। तो उस समय उन्होंने कहा कि अगस्त्य ऋषि ने जब मुझे श्राप दिया था और मैं जब एक सर्प बन रहा था तो मैंने प्रार्थना याचना की क्षमा कर दीजिए। तो उस समय उन्होंने कहा था कि ये जो वरदान मुझे दिए कि आप पकड़ पाओगे उसको, और दूसरा उन्होंने कहा था कि जब कोई तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे देगा तो उस समय में तुम मुक्त हो जाओगे। तो इसीलिए मैं सोचता हूं कि मुझे तुम्हें तो खाना होगा क्योंकि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाओगे। तो उस समय वहां युधिष्ठिर महाराज, उनको अपशकुन दिखने लगे। कई अपशकुनों का वर्णन करा गया है महाभारत में कि उनको देखने लगा और उन्हें लगा भीम को कुछ हो गया है। तो उन्होंने नकुल सहदेव उनको कहा कि आप यहीं रक्षा करो द्रौपदी की, और वे चले गए ढूंढने के लिए। तो जहां जहां भीम गए थे, क्योंकि भीम जहां से गए थे वहां मार्ग ढूंढना कोई कठिन नहीं था, जहां भी सारे पेड़ उखड़े पड़े हैं और भीम के चरण चिन्ह हैं, भीम के चरण चिन्ह बहुत बड़े हुआ करते थे। एक बार हम लोग बेलगाम में थे तो एक स्थान पर गए थे बहुत से ब्रह्मचारी मिलकर एक यात्रा के लिए। तो वहाँ स्थान पर कहा गया कि वहाँ भीम के चरण एक पहाड़ी पर हैं, तो बहुत विशाल हैं, इतने कि आप उसमें स्नान कर सकते हैं आराम से, इतना गड्ढा बन गया है उसके चरण से। तो देखते देखते पहुँचे युधिष्ठिर महाराज और उस स्थान पर आए, और फिर युधिष्ठिर ने देखा कि भीम को जकड़ा हुआ है, तो युधिष्ठिर विलाप करने लगे कि हाँ ये क्या हुआ। और फिर उन्होंने सर्प से पूछा, भीम से पूछा कि ये क्या हुआ, भीम तुम तो इतने शक्तिशाली थे, ये कैसे हो गया। तो भीम ने कहा ये यक्ष हैं या कोई देवता हैं और इन्होंने मुझे पकड़ लिया है। तो फिर युधिष्ठिर ने पूछा उनसे कि बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ये मेरा भाई है, इसको छोड़ दीजिए, आपको खाने के लिए ही चाहिए तो मैं कुछ और लाकर देता हूँ आपको खाने के लिए, इसको मत खाइए। तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर से कि नहीं, इसको तो मैं खाऊंगा ही, हाँ अगर तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो तब हो सकता है कि मैं इसे छोड़ दूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप पूछिए प्रश्न, मैं प्रयास करूँगा उत्तर देने का। तो उस समय राजा नहुष ने कुछ प्रश्न पूछे ब्राह्मणों के कर्तव्य के विषय में, ब्राह्मण कौन है, उन्होंने पूछा कि किसे ब्राह्मण कहना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने बड़ी सरलता से कह दिया, जिसके अंदर सत्य है, क्षमा है, दमा दमन कर सकता है, शील है, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता। तो नहुष ने पूछा कि तो क्या अगर कोई शूद्र इन गुणों को उत्पन्न कर ले, सत्य बोलने लगे, तो क्या वो ब्राह्मण हो जाएगा? तुम कहते हो कि ब्राह्मण का अर्थ है सत्यम, क्षमम, दमम, शौचम। तो अगर ये सत्य, ये दमम, ये क्षम कोई शूद्र परिवार में उत्पन्न होके करे तो क्या वो ब्राह्मण कहलाएगा? और उस समय युधिष्ठिर महाराज बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। वो उत्तर देते हैं जो भगवान ने इन चार वर्णों की रचना करने के समय उद्देश्य रखा था। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग शह। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि अगर कोई जन्म लेता है लेकिन कार्य नहीं करता तो उसको ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण का अर्थ है कि वो जन्म लेकर फिर वो कार्य करे ब्राह्मण के। तो ये जानना बहुत आवश्यक है। हम लोग अपने आप को किसी कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण मानने लगते हैं, एक धागा पहन लेते हैं और हम सोचते हैं हम ब्राह्मण हो गए हैं। तो कुल में जन्म लेना ये ब्राह्मण होने का प्रमाण नहीं है। ब्राह्मण होने का प्रमाण है कार्य। भगवान कहते हैं कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। अगर व्यक्ति उन गुणों को प्रकट करता है और कर्म वैसे करता है तब ब्राह्मण कहलाता है, ऐसे ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। तो ये सुनकर नाहुष बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भीम को छोड़ दिया और उसके बाद काफी संवाद हुआ उनका और तब उन्होंने अपनी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, दरअसल मैं एक समय राजा बन गया। ये कथा है कि इंद्र को जब कुछ श्राप मिला था, इंद्र नहीं थे वहां, तो राजा नहुष को इंद्र बनाया गया और उनको बड़ा अहंकार हो गया अपने इंद्र बनने का, क्योंकि ब्राह्मण उनको पालखी में उठाया करते थे। तो ऐसे ही एक समय इतना अहंकार हो गया कि उन्होंने सप्त ऋषियों को बुलाया, चलो आप मेरी पालखी उठाओ। और इतना ही नहीं, वो वर्णन करते हैं महाभारत में कि उन्होंने ऐसे ही ऋषियों को लात मार दी, अय ठीक से चलो। जब व्यक्ति को अहंकार हो जाता है, देखिए भीम को अहंकार हुआ अपने बल का, तो अनावश्यक वो पाप करने लगे। ऐसे ही जब राजा नहुष को अहंकार हुआ अपने राजा होने का, अपने इंद्र होने का, तो उस समय उन्होंने अपराध किया। तो हमारे लिए बहुत सुंदर संदेश है कि अहंकार के वश हमें भक्तों का अपमान नहीं करना चाहिए। तो ये राजा थे, इन्होंने एक लात मार दी एक ऋषि को और अगस्त्य मुनि से सहन नहीं हुआ। वैसे एक स्थान पर ये कथा इस प्रकार दी गई है, महाभारत में नहीं, दूसरे स्थान में, कि अगस्त्य मुनि को भी उन्होंने बुलाया उनकी पालखी उठाने के लिए, और अगस्त्य मुनि का कद कम है तो बाकी सारे लंबे लंबे थे और अगस्त्य मुनि थोड़े छोटे थे, तो टेढ़ी हो गई पालखी, और जो टेढ़ी हो गई तो उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने लात मार दी, अरे ठीक से नहीं चला रहे हो, क्या कर रहे हो। तो अगस्त्य मुनि ने कहा अच्छा, तो अगस्त्य मुनि ने श्राप दे दिया उन्हें। वैसे ये कथा ऐसी है कि जब ये इंद्र बने तो इंद्र की पत्नी का भोग करना चाहते थे, पहले ही बहुत भोग कर रहे थे, अब इनकी इच्छा हुई इंद्र की पत्नी की, उसके पास गए कि अब मैं इंद्र हूं, तुम्हें मेरी इच्छा पूरी कर। तो वो जान गई कि इसको तो कोई रोक नहीं सकता, तो उसने ये युक्ति की, उसने कहा जब आप वो जो सप्त ऋषि हैं उनके द्वारा उठाई गई पालकी पर आप मेरे पास आएंगे तब मैं आपका संग करूंगा। क्योंकि वो जानती थी कि सप्त ऋषि तो कोई छोटे और उसमें अगस्त्य मुनि है ही, तो अगस्त्य मुनि का अपराध करेगा और अगस्त्य मुनि श्राप दे देंगे तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, आएगा ही नहीं। तो इस तरह उन्हें श्राप मिला था और वो सर्प बने थे। तो हमें सीखना है कि भगवान की कृपा से जो भी हमें ऐश्वर्य मिलता है, जो भी हमें भोग की सुविधा मिलती है, उससे हमें अहंकार नहीं आना चाहिए और उस अहंकार के चलते हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपनी स्थिति से व्यक्ति गिर जाता। भक्ति कर रहा है, अगर अपमान कर देता है, वैष्णव अपराध कर देता है, गिर जाता है स्थिति से। इसीलिए बहुत आवश्यक है, जैसे राजा नहुष गिरे जैसे भीम पकड़े गए एक सर्प के द्वारा, ये प्रसंग हमें ये संदेश देते हैं कि आपके अंदर कितना ही बल क्यों ना हो, आपके पास कितना ही ऐश्वर्य क्यों ना हो, कितनी ही भोग की सुविधा क्यों ना हो, लेकिन अगर अहंकार आता है हृदय में, जिससे आप भक्तों के प्रति अपराध करते हो, भगवान उसको सहन नहीं करते। तो भीम के भी अहंकार को भगवान ने सहन नहीं किया। दरअसल ये अहंकार के कारण, ये अहंकार हमारे पतन का कारण होता है। जब व्यक्ति के हृदय में अहंकार आ जाता है, ये पहली सीढ़ी है पतन की। जिस समय महाभारत के अंत में युधिष्ठिर महाराज चल दिए, उनको पता चला कि भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर जा चुके हैं, तो वो चल दिए, उनके पीछे पीछे उनके भाई चले, द्रौपदी चली, युधिष्ठिर ने मुड़कर नहीं देखा। ये प्रसंग जब आएगा तो बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। तो उसमें जब एक एक गिरने लगे, सहदेव गिरे, नकुल गिरे, अर्जुन गिरे, भीम गिरे, द्रौपदी गिरी पहले, तो हर एक का कारण पूछ रहे थे। भीम युधिष्ठिर के पीछे भीम चल रहे थे, भीम के पीछे अर्जुन, अर्जुन के पीछे नकुल, नकुल के पीछे सहदेव, सहदेव के पीछे द्रौपदी। सबसे पहले द्रौपदी गिर गई, भीम ने पूछा द्रौपदी क्यों गिरी, फिर सहदेव, फिर नकुल, फिर अर्जुन, और हर एक के बारे में जब ये पूछ रहे थे, युधिष्ठिर महाराज ने बतलाया अहंकार। सहदेव को अपने सुंदर होने का अहंकार था, नकुल को ज्ञान का अहंकार था, अर्जुन ने घोषणा की थी कि मैं तो एक ही दिन में सारा युद्ध समाप्त कर दूंगा, उसको अपने बल का अहंकार हो गया, और भीम आपको भी बहुत अहंकार था, इसलिए भीम भी गिरे। तो देखिए अहंकार ये हमारे पतन का कारण है। जहां हृदय में अहंकार आने लगता है, किसी ऐश्वर्य से, किसी बल से, जैसे भीम को बल से आया, ऐश्वर्य तो कुछ नहीं था उसके पास, बल से आया, और राजा नहुष को ऐश्वर्यों से आया, तो फिर चाहे वो ऐश्वर्य के द्वारा हो या बल के द्वारा हो, अहंकार हमारे पतन का कारण है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों में नम्रता देखना चाहते हैं। महाप्रभुर भक्त गणेर वैराग्य प्रधान, जहां देखी प्रीति है न गौर भगवान। महाप्रभु के जो भक्त हैं उनकी प्रधानता है वैराग्य, और वैराग्य प्रारंभ होता है अहंकार को त्याग कर। अहंकारी व्यक्ति कैसे वैरागी हो सकता है? वैराग्य कोई बाहरी दिखावा नहीं है, वैराग्य कोई वेश धारण कर लेना नहीं है, वैराग्य हृदय से अहंकार को त्यागना है, वैराग्य हृदय में नम्रता को लाना है, वैराग्य हृदय में अपनी स्थिति को समझना है। इसलिए वैराग्य की पूर्णता आसक्ति में है। जब तक व्यक्ति आसक्त रहता है भौतिक भोगों से, वो वैरागी नहीं हो सकता। लेकिन केवल अनासक्ति भी वैराग्य की पूर्णता नहीं है, क्योंकि आसक्ति, कृष्ण में आसक्ति, ये वैराग्य की पूर्णता है। और व्यक्ति को कृष्ण में आसक्ति तब होती है जब वो अहंकार को त्यागता है। जब तक हमारे अंदर ये अहंकार बना रहता है, मैं कोई बहुत बड़े पद पर हूं, मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मैं बहुत धनवान हूं, मैं ज्ञानवान हूं, मैं वैराग्यवान हूं, मेरे अंदर बहुत बड़ा वैराग्य है, ये सारी चीजें जो अहंकार लाती हैं, इनसे हम कृष्ण की ओर नहीं जा सकते, ये पतन का कारण है। तो फिर एक भक्त के रूप में अगर आप अहंकार को रखते हुए सेवा कर रहे हो, अगर आप ये सोचते हो कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मेरे कारण मंदिर चल रहा है, अगर आप सोचते हो कि मैं बहुत ज्ञानवान व्यक्ति हूं, मेरे कारण प्रचार हो रहा है, अगर आप सोचते हो कि मैं बहुत वैरागी व्यक्ति हूं, मेरी तपस्या के बल पर सब कुछ चल रहा है, आप भगवान की नहीं अपने अहंकार की सेवा कर रहे हैं। ये भगवान की सेवा नहीं है, आप केवल अपने अहंकार को बढ़ा रहे हो कि देखो, और उस अहंकार के चलते हम दूसरे भक्तों को नीचा दिखाने के प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे कारण ये हो रहा है, इसलिए हम दूसरे भक्त को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं कि वो भक्त ऐसा है, ये भक्त वैसा है, दोष ढूंढते हैं, निंदा करते हैं, और ये सारी चीजें भक्ति के लिए लाभदायक नहीं है, ये केवल पतन का कारण है। और इसीलिए जीवन में हमें प्रयास करना चाहिए इस अहंकार को त्यागें। किस चीज का अहंकार? ये धन का अहंकार, ये बहुत बड़े बंगले का अहंकार, ये पद का अहंकार, ज्ञान का अहंकार क्षणों में समाप्त कर देते हैं भगवान। कितना समय लगता है भगवान को समाप्त करने में? कुछ क्षण। कितने ही बड़े बड़े विद्वान हुए, कहां हैं आज? बड़े ऐश्वर्यवान लोग हुए, कहां हैं? उनके तो ऐश्वर्य को ऐसे ही समाप्त कर दिया भगवान ने। क्षण लगे, कुछ क्षण, हवा तेज चली सारा ऐश्वर्य गया, पानी बढ़ गया सारा ऐश्वर्य गया। भगवान को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है अपनी सत्ता, अपनी शक्ति दिखलाने के लिए। जीवन भर जो व्यक्ति अहंकार में रहता है, बनाता है, भगवान क्षणों में चूर कर। भगवान कृष्ण को अहंकार पसंद ही नहीं है। गोपियों ने भी जब अहंकार किया, क्या अहंकार कि रास लीला के समय कृष्ण केवल मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं? जब ऐसा अहंकार गोपियों को हो गया, भगवान ने उन्हें भी त्याग दिया। गोपियां जो भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, सब कुछ समर्पित कर चुकी हैं भगवान को, इतना सा अहंकार भी भगवान ने सहन नहीं किया, छोड़ के चले गए। और हमारे अंदर अहंकार होना किस चीज का चाहिए? थोड़े बहुत ये धातु मिल जाने का, थोड़े धन मिल जाने का, थोड़ी प्रतिष्ठा मिल जाने का। अगर हम इतिहास देखें तो भगवान ने लोगों को दिया भी है और एक क्षण में वापस भी ले लिया। अर्जुन, अर्जुन कितना सुंदर उदाहरण है हमारे लिए। जीवन भर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाया, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, कोई उसके सामना नहीं कर सकता। और भगवान ने जब उसका अहंकार तोड़ा तो कैसे? बालकों के द्वारा हार गया, भील बालक जिनके पास गांडीव जैसा धनुष भी नहीं था। बच्चे पेड़ से वो ब्रांचेस तोड़ के, तने तोड़कर उसका तीर कमान बनाकर खेलते हैं। उत्तर भारत में बहुत प्रथा है ये। अभी रामलीला होती है, दशहरा होता है, उस समय हर बच्चा ऐसे खेलता है उसको लेकर। वैसे थे बालक, कोई गांडीव धनुष नहीं था, और अर्जुन गांडीव धनुष धारण करके आया। बच्चों ने कहा ये स्त्रियों को आप ले जा रहे हो, इनको छोड़ दो, आप ले जा नहीं सकते, हम इन्हें ले जाएंगे। अर्जुन हंसने लगा। अर्जुन ने कहा हट जा। बोले नहीं नहीं तो हमारे साथ युद्ध करो। अर्जुन को और हंसी आ गई, किसके साथ युद्ध करें? ये तो इस तरह है कि कोई आतंकवादी AK-47 लेकर आया और एक बच्चा खिलौना लेकर खड़ा है, बोला मेरे साथ युद्ध करो। अर्जुन हंसने लगा कि क्या ये बच्चों के साथ क्या युद्ध करना, एक तीर में सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अर्जुन के पास दिव्यास्त्र थे, ऐसे दिव्यास्त्र जिनको केवल अगर वो संकल्प करता था चलाने का, पृथ्वी हिल जाती थी। ऐसा वर्णन है महाभारत में, जब अर्जुन इंद्र के स्थान से, स्वर्ग से वापस आए दिव्यास्त्रों को लेकर, पशुपतास्त्र और पता नहीं क्या क्या। तो एक दिन युधिष्ठिर ने कामना की कि अरे अर्जुन तुम इतने अस्त्र शस्त्र लाओ, हम लोगों को दिखाओ, प्रदर्शन करो, क्या सीखा है तुमने? तो उसने कहा ठीक है कल सुबह करेंगे। ठीक है, अगले दिन सुबह अर्जुन तैयार, नहा धो के पूजा इत्यादि की और तैयार हो गया। उसने अपना धनुष पकड़ा और उन अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करने वाला था, अभी किया नहीं था। पृथ्वी के सारे प्राणी कांप उठे और फिर नारद मुनि को आना पड़ा। नारद मुनि ने समझाया अर्जुन को कि अर्जुन ये ऐसे नहीं चलाए जाते हैं, ये दिव्यास्त्र हैं, इनको केवल बहुत आवश्यकता हो तब चलाना चाहिए, बंद करो ये। युधिष्ठिर से कहा अरे आप ऐसी इच्छा क्यों कर रहे हैं? तो फिर बंद हुआ। मतलब देखिए कि अर्जुन केवल संकल्प करता था तो पृथ्वी हिल जाती थी, ऐसी शक्ति थी उसकी। और एक छोटे से बालक, अर्जुन को चुनौती दे रहे हैं और अर्जुन ने युद्ध किया, अर्जुन युद्ध हार गया। वही गांडीव, वही तीर, वही अर्जुन हार गया। तो भगवान को अगर किसी का अहंकार तोड़ना हो तो कुछ समय नहीं लगता, चूर चूर हो गया उसका अहंकार। बड़े बड़े अहंकार से कृष्ण की रानियों को लेकर आ रहे थे द्वारका से कि आपको हस्तिनापुर में हम संरक्षण देंगे। अहंकार था कि हम रक्षा कर सकते हैं। अरे भगवान की रानियों की भगवान खुद रक्षा करेंगे, लेकिन हम करेंगे, आप चलिए हस्तिनापुर, लेकर आ रहे हैं। भगवान ने तोड़ डाला अहंकार। कभी कभी जब भगवान अहंकार तोड़ते हैं तो बहुत चोट लगती है। कभी कभी भगवान नहीं करते हैं, समझा कर तोड़ते हैं, प्रेम से तोड़ते हैं, लेकिन ज्यादातर जब भगवान अहंकार तोड़ते हैं व्यक्ति को बहुत चोट लगती है, हृदय टूट जाता है। इसीलिए अच्छा है कि अपनी इच्छा से अहंकार को त्याग दें, नहीं तो अगर भगवान को तोड़ना पड़ा तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। अर्जुन तो सहन कर गया, लेकिन आप सोचिए कई ऐसे उदाहरण हैं जहां हम लोग इतिहास में देखते हैं कि भगवान ने कैसे लोगों का, आप इतिहास में क्यों जाते हैं, हमारे आजकल क्रिकेट चल रहा है ना, तो देखिए कभी एक टीम जीत जाती है, दूसरी बार इतनी बुरी तरह हारती है कि लोग चप्पल जूते लेकर मारते हैं उनको। उनको तो अहंकार हो ही नहीं सकता, भगवान कभी ऐसे बिठाते कभी ऐसे। तो इसलिए ये अहंकार को त्यागना चाहिए। तो ये दोनों प्रसंगों में हम देखते हैं, नाहुष ने अहंकार किया, भक्त के प्रति अपराध कर दिया, उसको श्राप मिला। भीम ने अहंकार किया, वो पकड़ा गया, सारा बल समाप्त हो गया। इसलिए भक्ति में जब हम आते हैं तो भक्तों को अहंकार को त्यागना है। अहंकार को बाहर टांग कर आया करिए जब मंदिर में आते हैं, ऐसे टांग के नहीं, जला कर आना चाहिए। अहंकार हमारे और कृष्ण के बीच में सबसे बड़ी बाधा है। ये अहंकार की, अहंकार का पर्दा है जो कृष्ण को देखने नहीं देता। माया जवनी का छन्नम, कुंती महारानी कहती हैं, माया जवनी का छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दिष्टा नटो नाट्य धरो यथा। कि एक पर्दा है, आवरण है, माया जवनी का छन्नम, आच्छन्नम उससे आच्छन्न है, माया ने एक पर्दा, और माया क्या करती है, कैसे पर्दा लाती है, अहंकार का। जैसे एक समय की कथा है, एक ब्राह्मण बड़े नियम से अपना संध्या वंदन किया करता था, सही टाइम पे, बिल्कुल कभी चूकता नहीं था। एक समय संध्या वंदन का समय हो रहा था, वो सो रहा था, तो एक व्यक्ति ने आके उसको उठाया, अरे अरे उठो, क्या बात है, अरे समय हो रहा है, देखो समय निकल जाएगा, ओ बहुत अच्छा, जल्दी से तैयार हुआ, फटाफट उसने संध्या वंदन किया। और उसके बाहर उसने देखा उस व्यक्ति को कि कौन है, तो उसने बोला, भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप कौन है, बड़े महान व्यक्ति हैं, आप कौन है, तो उसने कहा मैं कली हूं। मैंने कहा कली, अरे कली तो लोगों को नियम पालन करने नहीं देता, और आपने मुझे नियम पालन करने में लगाया, मेरा तो नियम टूट रहा था, तो फिर आपने क्यों मुझे नियम पालन करने के लिए लगाया। कली ने कहा, महाराज अगर आज आपका नियम टूट जाता तो आपके हृदय में अहंकार कैसे रहता कि मैं कभी भी नियम नहीं तोड़ता हूं, और अहंकार नहीं रहेगा तो मेरा क्या लाभ है, मेरा तो काम ही है ये अहंकार बढ़ाना, तो अहंकार बढ़ा रहेगा तो आप मेरे वश में रहोगे। क्योंकि अगर वो व्यक्ति का नियम टूट जाता तो अहंकार चला जाता कि हाँ कर नहीं पाया मैं, लेकिन बना रहा तो उसको अहंकार है, हाँ कभी बिल्कुल नहीं। तो देखिए कितने प्रकार का अहंकार हमारे हृदय में घुस सकता है, विशेष करके भक्ति में, छोटे छोटे कार्य करते हुए अहंकार आ जाता है हमारे मन में कि हम लोग हार बना रहे हैं, तो अहंकार आता है, मेरे जैसा हार कोई बना ही नहीं सकता। जिस दिन मैं हार बनाता हूं या बनाती हूं, क्षमा कीजिए अभी कोई बना नहीं रहा ना, ओके, जिस दिन मैं बनाती हूं उस दिन तो भगवान बड़े सुंदर लगते हैं, बाकी दिन ठीक है, लोग सीख रहे हैं अभी, लेकिन मंदिर साफ करता है, कहां कहां घुस जाता है, मंदिर साफ करता है तो उसमें भी कि देखो कितना चमक रहा है, इसमें देखकर तिलक लगा सकते हैं, ऐसा साफ होना चाहिए। या बर्तन साफ करता है, सब जगह अहंकार घुस जाता है छोटी छोटी चीजों में। इसलिए अहंकार को त्यागना चाहिए। तो राजा नहुष ने अपनी कथा सुनाई और हम सबके लिए संदेश दिया कि इस अहंकार के चलते हम अपराध, और अहंकार का सबसे खतरनाक फल होता है हम अपराध कर बैठते हैं वैष्णवों के प्रति। नम्रता चली जाती है, भले बाहरी कोई दिखावा करे नम्रता का, 10 बार दंडवत करे, लेकिन अगर हृदय में अहंकार है तो अपराध करेगा ही वो, आज नहीं तो कल। और ये अपराध हमें, अपराध का अर्थ क्या होता है, अपराध, अपराध यानी जो व्यक्ति आराधना से दूर चला जाता है, राधा रानी की कृपा नहीं मिलती उसको, इसको अपराध कहते हैं। तो इसलिए अपराध हम कर बैठते हैं और फिर भक्ति का नाश हो जाता है। फिर एक दिन हम कहीं बाहर दिखाई देते हैं, भक्त पूछता है यार बड़ा अच्छा भक्ति किया करते थे, अरे नहीं वो सब बेकार की बात है, अच्छा तो ये है खाओ पियो मजा करो। तो इसलिए अहंकार से बचना। तो राजा नहुष इस तरह फिर मुक्त हो गए क्योंकि प्रश्नों के उत्तर मिल गए और वो अपने स्थान वापस चले गए। तो ऐसे कई और प्रसंग महाभारत में वर्णन किए गए। और फिर साथ ही साथ युधिष्ठिर महाराज ने एक समय कलयुग के वर्णन को पूछा और उस समय ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, जय श्री श्री गौनिताय की, जय श्री प्रभुपाद की, ऋषियों ने ब्राह्मणों ने कलयुग का वर्णन किया कि क्या होने वाला है कलयुग में और कल की अवतार आएंगे, इसका वर्णन किया कैसे आएंगे कब आएंगे, ये सारा वर्णन हुआ महाभारत में। तो उन्होंने बताया कि कैसे कलयुग के क्या क्या लक्षण हैं, लोग क्या क्या करेंगे, बहुत सारी चीजों को उन्होंने कहा कलयुग के, इतने लक्षण दिए हैं, करीब 2 अध्याय केवल कलयुग के लक्षणों का वर्णन है और सब कुछ हम देख सकते हैं अभी छोटे स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर होगा आगे चलकर, लेकिन छोटे स्तर पर अभी हम लोग देख सकते हैं। जैसे वो वर्णन करते हैं कि कलयुग में धोखा कपट का धर्म बहुत फैलेगा, कपटी धर्म बहुत फैलेगा, और हम लोग देख रहे हैं कपट का धर्म बहुत फैल रहा है, धोखा देने का धर्म, लोग धर्म के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं। तो ऐसा सच्चा धर्म का प्रचार कम हो जाएगा, झूठा धर्म ज्यादा फैलेगा, सत्यता को लोग त्याग देंगे, उम्र कम हो जाएगी। ये वर्णन भागवत में भी किया गया है कि लोगों की आयु अल्प होगी, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपदितः। तो ये सारी चीजें महाभारत में भी वर्णन की गई और शत्रुता बढ़ेगी इत्यादि वर्णन किया गया। और उसके बाद एक बड़ा सुंदर प्रसंग है जहां युधिष्ठिर महाराज का यक्ष के साथ संवाद हुआ। ये बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है महाभारत का। युधिष्ठिर महाराज एक स्थान पर थे, उन्होंने सहदेव को भेजा, जाओ थोड़ा पानी लेकर आओ, देखो कहीं पानी हो तो। सहदेव चले गए, पानी मिला, पीने जा रहे थे, सहदेव को सुनाई दिया यक्ष की आवाज, पानी नहीं पीना ये मेरे अधिकार में है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। सहदेव ने सुना नहीं, अचेत होकर गिर पड़े। फिर उसके बाद नकुल को भेजा, नकुल भी ऐसे ही। फिर अर्जुन को भेजा, तो अर्जुन को भी उन्होंने दिया चुनौती दी, तो अर्जुन तो गुस्से में आ गए। अर्जुन ने कहा हिम्मत है तो सामने आकर बोलो, कहीं पीछे से क्यों बोल रहे हो। और फिर जहां से आवाज आ रही थी अर्जुन ने सब तरफ बाण चला दिए दिखाने के लिए कि देखो मेरी कितनी शक्ति है। अब फिर पानी पीने चले गए, अर्जुन भी गिर पड़े। भीम आए, अब भीम को कोई चुनौती दे तो भीम कैसे सहन कर सकते हैं, भीम भी चले गए, भीम भी गिर पड़े। और फिर युधिष्ठिर महाराज आए ढूंढते हुए और उन्होंने देखा कि मेरे सब भाई गिरे पड़े हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि ये मरे नहीं हैं, इनके शरीर की कांति गई नहीं, कोई निशान नहीं है हथियार का, यहाँ पर आसपास किसी और के पैरों के निशान नहीं है, मतलब कोई युद्ध नहीं हुआ। तो या तो ये किसी भूत प्रेत का बात है, या फिर दुर्योधन ने कोई चाल चली, फिर से पानी में जहर मिला दिया, क्या किया है। तो पानी को उन्होंने देखा, पक्षी पी रहे थे, तो बोला हाँ पानी में जहर तो नहीं है, तो फिर वो भी नहीं हुआ। तो उस समय उन्होंने सोचा चलो मैं पानी पीकर देखता हूँ, ये लोग सब पानी पीने आए थे, तभी कुछ पानी में प्रवेश किया, उनको भी वही आवाज़ सुनाई दी। और उस समय उन्होंने कहा ठीक है, आप हैं कहाँ पहले मुझे ये बताइए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो फिर एक वृक्ष पर उन्हें यक्ष के दर्शन हुए और उन्होंने कई प्रश्न पूछे, 100 से अधिक प्रश्न महाभारत में यक्ष ने पूछे, जिनमें कई बड़े साधारण थे। युधिष्ठिर महाराज ने साधारण सा उत्तर दिया उनका। जैसे उन्होंने पूछा कि इस जगत में अमृत क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा गाय का दूध अमृत है इस जगत में। तो ऐसे कई साधारण उत्तर हुए, कई भक्ति से संबंधित उत्तर हुए, कई नैतिकता के आधार पर प्रश्न हुए, उसका उत्तर उन्होंने नैतिकता के आधार पर दिया। तो ऐसे यक्ष के साथ उनका बहुत सुंदर संवाद हुआ। सारे प्रश्नों को कहना तो संभव नहीं है, कुछ प्रश्न का वर्णन करेंगे। जैसे यक्ष ने पूछा कि सबसे बड़ा धन क्या है, और युधिष्ठिर महाराज ने कहा वेदों का ज्ञान। जिस व्यक्ति को वेदों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, वो सही में धनवान है। अन्यथा धन लेकर पैसा लेने वाला वो कोई ज्यादा धनवान नहीं है। तो ये हमें जानना चाहिए, सच्चा धन ज्ञान है। जो व्यक्ति ज्ञानी है वो हर अवस्था में अपने आप को बनाए रख सकता है, लेकिन जो व्यक्ति केवल धनवान है वो हर अवस्था में नहीं बनाए रख सकता अपने आप को, कष्टों में भी नहीं बनाए रख सकता। तो ऐसे उन्होंने कहा। दूसरा एक प्रश्न उन्होंने किया कि सच्ची प्रसन्नता क्या है, और उस समय युधिष्ठिर महाराज ने कहा सच्ची प्रसन्नता है संतुष्टि। जो व्यक्ति संतुष्ट है वो सही दृष्टि में प्रसन्न है। भगवद गीता में भी भगवान इसी को कहते हैं कि जिसको संतोष नहीं है वो अशांतस्य कुतः सुखम, अगर वो अशांत है तो उसको सुख कहाँ से हो सकता है। तो इसलिए जो संतुष्ट है, हमें संतुष्ट होना सीखना है। जो भी भगवान की योजना से हमें मिले उसमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। बाहर के जगत में लोग संतुष्ट नहीं हैं, बहुत ज़्यादा है उनके पास। कभी कभी लोग सोचते हैं कि संतुष्टि ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करने से आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में हम लोग देखते हैं श्रीधर कोलावेचा क्या था उनके पास, या हम लोग तुकाराम जी की बात करें, सुदामा की बात करें, कौन सा बड़ा धन था उनके पास, कौन से बड़े धनवान थे। श्रीधर कोला बेचा वो तो केवल केले के पत्तों को बेचा करते थे, खोला बेचा इसीलिए कहते थे उनको, तो उसको बेचा करते थे। क्या मिलता था, जो मिलता था उसमें से आधा गंगा की सेवा के लिए लगा देते थे, थोड़ा बहुत अपने लिए रखते थे, बस कोई धन नहीं था उनके पास, लेकिन संतुष्ट थे। जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि श्रीधर तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा धन है, एक दिन सबको पता चल जाएगा, तुमने छुपा कर रखा है, तो श्रीधर कहते हैं मेरे पास कोई धन नहीं है, आप ऐसा क्यों बोलते हैं, आइए देख लीजिए, ये मेरा घर है, बस एक छत है मेरे पास थोड़ी बहुत, वो भी उसका जो ऊपर छत थी वो हर जगह जगह से छेद हो गया था, जब बारिश होती थी तो पता नहीं चलता था कि अंदर बैठे हैं या बाहर बैठे हैं। रात के समय अगर वो ऊपर देखे तो ऐसा लगता था कि बाहर खुले में सो रहे, इतने सारे उसमें उनका जो छत थी उसमें छेद थे। और कपड़े, वो ऐसे कपड़े पहनते थे कि कपड़ा कम और उसमें गांठें ज्यादा दिखाई देती थी, जहां से फट जाता था एक गांठ मार दे दूसरी जगह फटा कहां, तो पूरे कपड़े में गांठें ज्यादा दिखाई देती थी, कपड़ा कम दिखाई देता था। और एक टूटा फूटा बर्तन था उनके पास, उसमें भी कई ऐसा कि अगर चोर भी आ जाए तो गलती से भी उसको लेके नहीं जाए, ऐसा बर्तन में वो रखा करते थे बर्तन अपने पास। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं तुम बड़े धनवान हो। अरे क्या धनवान है। तो उस समय एक प्रश्न चैतन्य महाप्रभु ने एक समय उनसे किया था कि तुम बहुत क्यों नहीं कमाते हो, और क्यों नहीं कमाते हो। तो उसने कहा कि देखिए इस जीवन में, इस जगत में एक चिड़िया और इवन ब्रह्मा वो सब अपना अपना कर्म लेकर आए हैं। जिसको जितना मिलना है वो तो मिलता है, चिड़िया को जितना मिलता है उसको मिलता है, और ब्रह्मा को जो मिलना है वो मिलता है, लेकिन अगर उससे व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो क्या लाभ है। इसलिए मुझे जो मिलता है मैं संतुष्ट हूं। भगवान वामन देव संतुष्टि के सिद्धांतों को देते हैं। जब बलि महाराज को वो उपदेश देते हैं, जब बलि महाराज उनसे कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना है, बलि महाराज से उन्होंने 3 पग भूमि मांग ली, वो भी मेरे पग आपके नहीं। बलि महाराज हंसने लगे, शक्ल से तो बड़े विद्वान लगते हो, अक्कल है नहीं, मूर्ख हो एकदम। अरे मैं इतना बड़ा राजा हूँ, गांव दे सकता हूँ, धन दे सकता हूँ, सोना दे सकता हूँ, सुंदर स्त्रियां दे सकता हूँ आपको विवाह के लिए ब्राह्मण, लेकिन क्या मांगा आपने, 3 पग भूमि, वो भी आपके मेरे नहीं, मेरे थोड़े बड़े हैं, आपके तो वो भी छोटे छोटे पांव हैं। ऑफकोर्स बलि महाराज जानते नहीं थे क्यों अपने पांव मांग रहे हैं। तो वामन देव ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति 3 पग भूमि में संतुष्ट नहीं है तो सारी पृथ्वी भी मिल जाएगी तो संतुष्ट नहीं रहेगा। तो संतुष्टि बहुत आवश्यक है। बाहर के देशों में लोगों के पास बहुत है, इतना है, इतना है कि ऐसा वर्णन है कि अमेरिका में हर वर्ष हजारों टन गेहूं चावल फेंक दिया जाता है समुद्र में ताकि रेट कम नहीं हो जाए, इतना है उनके पास, वो फेंक रहे हैं। वैसे वहां पर व्यक्ति कितना अमीर है इसको जानने के बड़े तरीके हैं, आपको 1-2 तरीके बताते हैं। एक तरीका है कि वो कितना खरीदता है, तो जो जितना ज्यादा खरीदता है वो उतना अमीर है, एक वहां पर ऐसे देखा जाता है। और दूसरा बड़ा विचित्र तरीका है उनका अमीर देखने का, वे लोग उसको वहां पर कहते हैं गार्बेज डिस्पोजल इंडेक्स, मतलब जो घर से कूड़ा फेंका जाता है बाहर, तो कौन कितना ज्यादा कूड़ा फेंकता है वो उतना ज्यादा अमीर है वहां पर, ये ऐसे वो लोग वहां प्रमाण लगाते हैं। तो कितना, मतलब जिसने इतना फेंका वो थोड़ा कम अमीर है, जिसने ज्यादा फेंका वो ज्यादा अमीर है। तो वहां पर बड़ा अच्छा सिस्टम है कूड़ा का, सब पूरा मेजर किया जाता है, लेकिन इस घर से इतना मिला, इस घर से इतना, फिर महीने का साल का कैलकुलेशन होता, रहे इसने इतना कचरा फेंका, बहुत महान आदमी है, बड़ा व्यक्ति है। आपको अगर इंडिया में करने लगे तो पता नहीं गरीब लोग सबसे अमीर कहलाएंगे या क्या होगा पता नहीं। तो बहुत कुछ है उन लोगों के पास, संतुष्टि नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं है इस जगत में। एक सन्यासी एक बार बता रहे थे कि एक बार वे सड़क पर खड़े थे, कोई गाड़ी नहीं थी तो लोगों से लिफ्ट मांग रहे थे, तो एक बहुत बड़ी गाड़ी आई, बहुत बड़ी, उसमें बहुत अमीर व्यक्ति बैठा था, उसने बोला ठीक है आइए मैं आपको छोड़ता हूँ, अंदर लिया, सन्यासी थे। वो बता रहे थे कि इतनी बड़ी गाड़ी थी वो, बहुत लंबी लिमोजिन, मर्सिडीज लिमोजिन होती है, बहुत बड़ी, कि इतनी बड़ी थी कि वो जहां बैठे थे उनको अब वहां से ड्राइवर को अगर कुछ कहना था तो फोन पर कहना पड़ता था, फोन लगा था, फोन उठा के कहते थे रोको चलाओ, क्योंकि चिल्ला नहीं सकते इतनी बड़ी गाड़ी। तो बता रहे थे कि वो जब बात करने लगे तो ये व्यक्ति बता रहा था, ये सालों पहले की बात है, तो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था, बड़ा पैसे वाला था, उसको हर रोज उस समय $20,000 की कमाई होती थी हर रोज। अभी डॉलर कितना है, 68, तो 20,000 × 68 कितना हो गया, इसके लोग हैं ये सब इंजीनियर्स वगैरह यहाँ बैठे हुए हैं, कितना होता है, बीटेक किया है ना, 30,60,000, 30,13,00,000 होता है, 13,00,000, ओके हमें नहीं पता, जो भी होता है तो समझ लीजिए 15,00,000 के करीब, 15,00,000 रुपया दिन की उसकी उस समय कमाई थी कई सालों पहले। और बहुत सारे लोग उसको जानते थे, जहां भी जाता था लोग ऑटोग्राफ लेना, फोटो खिंचाना, बहुत कुछ रोज, और बड़े बड़े लोगों से मिलना, इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलना, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हों या फिर दूसरे प्रसिद्ध लोग हों, फिल्म के स्टार्स हों, उनसे मिलना। तो बता रहे थे कि जब ये व्यक्ति बात करने लगा, थोड़े समय बात कर कहने लगा कि आपको एक बात बताता हूं, लोग मुझसे मिलना चाहते हैं लेकिन मुझसे इसलिए नहीं मिलना चाहते कि मुझसे प्रेम करते हैं, केवल वो मुझसे मिलकर अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं कि हम किसी बड़े व्यक्ति से मिले, बस राइट। अपने आनंद के लिए मिलना चाहते हैं, मेरे आनंद के लिए नहीं, मुझे प्रेम करते हैं इसलिए नहीं मिलते हैं आके मुझसे, क्योंकि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं इसलिए उनको आनंद आता है कि हाँ हम एक बड़े व्यक्ति के साथ खड़े हुए, हमने फोटो खिंचाई, उसने हमारे लिए कुछ लिख दिया, तो बस इसीलिए। और वो बता रहे थे कि ये कहते कहते वो रोने लग गया और उसने कहा कि मुझे इस जीवन में कोई प्यार नहीं करता, सब केवल मेरे पैसे और मेरी पोजीशन के पीछे है। और फिर वो उनसे कहने लगा, सन्यासी से, ये सन्यासी थे, उनसे कहने लगा कि मेरी इच्छा है मैं आपके जैसा जीवन जीऊं। सन्यासी ने कहा मैं तो सड़क पे खड़ा होकर लिफ्ट मांगता हूं, आपके पास इतनी बड़ी गाड़ी है। उन्होंने कहा नहीं, मेरी इच्छा है मैं आपके जैसा जीवन जीऊं। और फिर वो बता रहे थे कि उन्होंने बाहर देखा तो बाहर खेत थे, खेतों में लोग चावल के खेतों में काम कर रहे थे, और उसने कहा मेरी बड़ी इच्छा मैं इन लोगों के साथ जाकर बैठकर इनके साथ काम करूं, ये सही जीवन है, ये लोग जी रहे हैं, मेरा क्या जीवन है। देखिए कौन व्यक्ति कह रहा है, बड़ा इन्फ्लुएंशियल, 15 लाख रुपए दिन का कमाने वाला, कोई प्रसन्नता नहीं, संतुष्टि नहीं, आनंद नहीं। तो वो सोच रहा है, हम लोग सोचते हैं वो कार में घूम रहा है वो बड़ा संतुष्ट है, वो सोचते हैं ये पैदल घूम रहा है कितना संतुष्ट है। जैसे हमने एक बार आपको एक कथा सुनाई थी एक राजा की, एक राजा थे और राजा होने के कारण हमेशा चिंता, सुबह से उठ के चिंता शुरू हो जाती थी, राज्य का काम ये वो। लेकिन वो देखते थे कि उनका एक नौकर था, सुबह सुबह वो आता था सब छोटा मोटा काम करने और बड़ा प्रसन्न रहता था, बहुत आराम से हंसते हुए प्रसन्नता से कार्य करता था। और राजा को देखकर बड़ा दुख होता था, मैं राजा हूं ये मेरा नौकर है, मैं इतनी चिंताओं का बोझ लेके चलता हूं और ये बड़े आराम से प्रसन्न है। तो एक दिन उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि ये मुझे देखकर बड़ा बड़ा दुख होता है कि मैं राजा होकर इतना सुखी नहीं हूं, ये एक सेवक होकर इतना सुखी है, देखो कैसे आराम से गाते हुए सेवा कर रहा है, मुस्कुराते हुए सेवा कर रहा है। मंत्री ने कहा आप चिंता मत कीजिए, कल ही इसको क्लब 99 का मेंबर बना देते हैं। बोले क्लब 99 वो क्या है, बोले आपको बताता हूं आप चिंता मत करो, आप 2-3 दिन देखते रहो इसको बस। राजा ने कहा ठीक है। तो मंत्री ने क्या किया, एक थैली ली, उसमें 99 सोने के सिक्के डाले, 99 सौ नहीं, और वो 99 सिक्के जाकर रात के समय उसके घर के बाहर रख दिए, बस क्लब 99 का मेंबर। अब ये व्यक्ति बाहर निकला सुबह सुबह प्रसन्नता में, अचानक उसने देखा अरे ये क्या पड़ा हुआ, थैली उसने उठाई, सोने के सिक्के, अरे बहुत जल्दी जल्दी बंद किया, पत्नी को बुलाया, देखो सोने के सिक्के मिले इतने सारे, गिनो गिनो जल्दी गिनो, गिनना शुरू किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 99, 95, 96, 97, 98, 99, 99। नहीं नहीं गड़बड़ है, अरे कोई रखेगा तो 99 क्यों रखेगा, 100 रखेगा ना, फिर से गिना, नहीं चलो ढूंढ के आओ कहीं गिर गया होगा, तो सब बाहर ढूंढ रहा है वो, चिंता में है कहाँ गया एक क्वाइन। अब जो 99 मिला उसका सुख चला गया, अब जो एक खो गया अब उसको ढूंढ रहा, कहीं तो गया होगा। अब उस दिन पूरा दिन वो चिंता में रहा, कहाँ कौन ले गया उठा के मेरा एक क्वाइन है जो 90 है, मेरा एक क्वाइन कहाँ चला गया, पूरा दिन चिंता में, पत्नी भी ढूंढ रही है दिन भर कहाँ गया एक, पत्नी को बोल के गया था जरा गड्ढा उड्ढा खोद के भी देख लेना कहीं पर कुछ मिल जाए। और राजा ने देखा उस दिन बड़ी चिंता में, अरे इसको क्या हो गया, बड़े गाते हुए प्रसन्नता में सेवा कर रहा था, आज बस सर खुजा रहा है, कुछ मुंह ऐसा लटका हुआ है। अगले दिन फिर वही, क्यों, वो शाम को वापस गया, पत्नी से पूछा मिला कहीं, बोला नहीं नुकसान हो गया, एक सोने का सिक्का कहीं चला गया, अब मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करके पैसा कमा के कैसे भी अब एक सोने का सिक्का लाके इसको 100 पूरा करूंगा मैं। बोला ठीक है, तो तब से बड़ी मेहनत, बस सोने का सिक्का पूरा करना, और सारी प्रसन्नता चली गई। तो राजा ने मंत्री को बुलाया, भाई तुमने क्या किया, अरे इतना खुश रहता था ये तो। बोले कुछ नहीं, क्लब 99 का मेंबर बना दिया इसको। तो उन्होंने बताया कि 99 दिए, अब वो 99 से खुश नहीं है, वो एक के लिए मेहनत कर रहा है, उसको एक सोने का सिक्का चाहिए। तो ये हमारा है, जो हमें समाज में मिल जाता है हमें, तो लोग संतुष्ट नहीं है। तो ये व्यक्ति इतना बड़ा व्यक्ति है, लेकिन वो एक सन्यासी को कह रहा है कि मुझे तुम्हारे जैसा जीवन जीना, क्योंकि वो देख रहा है कि असली प्रसन्नता उसमें है। कल हम मणिपाल में कुछ विद्यार्थियों को यही क्लास सुना रहे थे, कैसे प्रसन्न रहना चाहिए। और उसके बाद एक लड़का आकर बोला था, आपको देखकर लगता है कि आप सही में प्रसन्न हैं, मैंने ऐसी प्रसन्नता और किसी के चेहरे पर नहीं देखी। हमने कहा आप भी आ जाओ, ब्रह्मचारी बनो, कोई चिंता नहीं, सब हो जाए। तो ये संतुष्टि नहीं है जीवन में, इसीलिए हम प्रसन्न नहीं हैं। तो युधिष्ठिर महाराज से जब प्रश्न किया कि प्रसन्नता कैसे आ सकती है, तो उन्होंने कहा कि प्रसन्नता संतुष्ट होके आ सकती है। और फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने किया, अंतिम प्रश्न लेंगे, तो उसके बाद भगवान के दर्शन होंगे। तो उन्होंने अंतिम प्रश्न किया कि मुझे वो चीजें बताओ, पहली चीज जिसको त्याग देने से व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, ऐसी कौन सी चीज है जिसको त्याग देने से प्रसन्न हो जाता है, या जिसको त्यागने से वो शोक नहीं करता, या जिसको त्याग देने से हमेशा, उसको त्यागने से उसको कोई दुख नहीं होता, ऐसी कुछ चीजें बताओ। तो युधिष्ठिर महाराज ने बताया, पहली चीज, व्यक्ति जब अहंकार को त्यागता है तो सही सुख को प्राप्त करता है, क्योंकि जब तक अहंकारी रहता है सुख को नहीं प्राप्त करता। जब वो क्रोध को त्याग देता है तब शोक नहीं करता। शोक करना मतलब ये हो गया वो हो गया, लेकिन जब वो क्रोध को त्याग देता है कि कोई क्रोध नहीं किसी चीज के लिए नहीं, तो संतुष्ट रह सकता है, शांत रह सकता है, उसके हृदय में शांतता आती है। तो ऐसे कई प्रश्न आए, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण, एक नहीं दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिन पर विस्तार से चर्चा अगले मंगलवार को करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी, कुछ पूछना चाहते हैं मन में कुछ?